5 जून दिन मंगलवार दिन भर मैं हूँ रेहान फतेह। रक्षा मंत्री ने कहा कश्मीर में रमजान सीज फायर रहेगा जारी।
वी रेस्पेक्ट द सीज फायर व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय द रिस्पेक्टफुल होम मिनिस्टर। हाउएवर इवन बाय हिज नरेशन एनी अनप्रोवोक्ड अटैक्स द आर्मी इज गिवन द राइट टू रिस्पोंड।
बताएंगे आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में क्यों बार बार गिरती है बिजली। जिक्र होगा झारखंड में अगरबत्तियां बनाने वाली आदिवासी महिलाओं का भी।
और अभी फिलहाल 2 मशीनें हैं, इसके बाद हम लोग 25 मशीन तुरंत अभी आएंगे यहाँ पर लगाने वाले हैं। और इसका जो उत्पादन है और बिक्री हमारे सावन मेला के साथ ही शुरुआत यहाँ पर होगी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में रमजान के लिए घोषित संघर्ष विराम का सम्मान करती रहेगी। सेना ने रमजान के दौरान भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों के खिलाफ अपने अभियान रोक रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पार से होने वाले हर हमले का ठोस जवाब दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम के लिए सहमत होने के बावजूद हाल के दिनों में सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं जिनमें दोनों ओर से जानहानि हुई है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह ने देश के समूची आयकर व्यवस्था की समीक्षा के आदेश दिए हैं। सप्ताह भर से चल रहे प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। बावजूद इसके महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। देश के नए प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र में किंग अब्दुल्लाह ने कहा है कि लोगों पर अनुचित कर न लगाए जाएं। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने बीबीसी से कहा है कि उनके देश के खिलाफ की गई नाकेबंदी ने उनके देश को पहले से अधिक मजबूत किया है। अल थानी ने कहा है कि कतर बातचीत के लिए तैयार है और मतभेद खत्म करने का एक यही रास्ता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट में जीत किसी की भी नहीं होगी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र के कतर के साथ संबंध खत्म होने के 1 साल पूरे होने पर वो बीबीसी से खास बात कर रहे थे। कतर पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाने वाले इन अरब देशों ने हर ओर से कतर की नाकेबंदी कर रखी है। मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने बीबीसी से कहा,
This accusation has been false accusation. Why they have been accused?
ये एक झूठा आरोप है। वो कतर पर क्यों आतंकवाद को आर्थिक मदद देने का आरोप लगा रहे हैं जबकि कतर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के केंद्र में है। वैश्विक गठबंधन की कमान कतर में ही स्थित है। कतर ने आतंकवादियों और आतंकवाद को आर्थिक मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबास्टियन कुर्ज का कहना है कि उनका देश रूस और पश्चिमी देशों के बीच पुल का काम करना चाहता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऑस्ट्रिया के दौरे पर आ रहे हैं। बीते लगभग 1 साल में राष्ट्रपति पुतिन का यह पहला पश्चिमी यूरोपीय दौरा है और ये ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोपीय संघ और रूस के बीच कई मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। सीरिया और यूक्रेन में रूस की भूमिका और ब्रिटेन में पूर्व जासूस को जहर दिए जाने के मामले के बाद यूरोपीय संघ रूस से खुश नहीं है। सोमवार को पुतिन ने यूरोपीय संघ को रूस का सबसे बड़ा आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोगी बताते हुए कहा था कि वो इसमें विभाजन नहीं चाहते हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA को आधिकारिक रूप से बताया है कि उसने अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना से ईरान अधिक मात्रा में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बना सकेगा जो परमाणु संवर्धन का अहम घटक है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अली अकबर सालेही ने कहा है कि ईरान नातांज परमाणु प्रतिष्ठान में अपने अति उन्नत सेंट्रीफ्यूज असेंबली सेंटर का इस्तेमाल शुरू करने जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परमाणु संवर्धन समझौते की शर्तों के तहत ही किया जाएगा। बीते महीने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को ईरान परमाणु समझौते से बाहर कर दिया था। मलेशिया में जारी भ्रष्टाचार की एक प्रमुख जांच के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी से पूछताछ की गई है। सुरक्षा गार्डों और वकीलों से घिरी रोस्मा मंसूर जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंची हैं। उनके घर पर पड़े छापे में 400 से अधिक महंगे हैंडबैग और ज्वेलरी मिली थी जिसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतेह का। भारत सरकार का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में रमजान सीज फायर जारी रखेगा। इस संघर्ष विराम का ऐलान गृह मंत्रालय ने पवित्र रमजान माह के मद्देनजर किया था, लेकिन कुछ हलकों में इस बात को लेकर डर है कि चरमपंथी संघर्ष विराम के समय का इस्तेमाल फिर से मजबूत होने में करेंगे। सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
पिछले दिनों सुरक्षा बलों पर हुए हमलों और एक वर्ग के बीच जारी आशंकाओं के बावजूद भारत सरकार कश्मीर में रमजान सीज फायर जारी रखेगी। दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,
हम गृह मंत्री के जरिए ऐलान किए गए संघर्ष विराम का आदर करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि सेना के पास इस बात का हक है कि वो अपने ऊपर बिना वजह किए गए किसी तरह के हमले का जवाब दे सकती है। ये हमारा फर्ज है कि हम सीमा को सुरक्षित रखें। हम इस बात के लिए सजग रहेंगे कि कोई भी बेवजह हमला बिना जवाबी कार्रवाई के ना हो।
निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय का काम नहीं कि वो इस बात का लेखा जोखा करे कि संघर्ष विराम सफल हुआ है या नहीं, और उसका काम देश की सीमाओं की हिफाजत करना है। ऐसा उन्होंने रमजान सीज फायर की सफलता पर किए गए एक सवाल के जवाब में कहा था। 16 मई को किए गए ट्वीट्स में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वो पवित्र रमजान माह के भीतर जम्मू कश्मीर में किसी तरह का ऑपरेशन ना करें, लेकिन साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि सुरक्षा बलों को इस बात का अधिकार होगा कि वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए और खुद पर किए गए हमलों का जवाब दें। रमजान के दौरान संघर्ष विराम का प्रस्ताव भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से आया था। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि संघर्ष विराम का फैसला सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक में लिया गया है, लेकिन सूबे की सरकार में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि वो इसके खिलाफ है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं का मत है कि सेना की कड़ी कार्रवाई की वजह से चरमपंथी फिलहाल दबाव में है और किसी भी तरह के सीज फायर का मतलब होगा उन्हें फिर से ताकत जुटाने का मौका देना। कुछ इसी तरह की पॉलिसी पिछले दिनों भारत सरकार की भी रही है, जिसकी कुछ हलकों में निंदा भी हुई। आलोचकों का कहना था कि कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है और इसे महज एक सैन्य समस्या की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच पिछले सप्ताह भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बैठक हुई है, जिसमें साल 2003 में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम के फैसलों को लागू करने की बात तय हुई है। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि
talks cannot go on hand in hand, they can't go simultaneously. So MEA के द्वारा माननीय सुषमा जी के द्वारा बयान आ चुके हैं, उसमें मैं जोड़ना नहीं चाहती हूँ, वही है सरकार की रवैया।
बैठक में फैसला लिया गया है कि नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ से हो रही फायरिंग को रोका जाएगा। साल 2016 से तेज हुई फायरिंग में हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जबकि दर्जनों की मौत हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी जफरुल्ला खान जमाली के प्रधानमंत्री काल में किए गए 2003 संघर्ष विराम को भी कुछ लोग रमजान सीज फायर के नाम से बुलाते हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में एक लंबा तुलनात्मक तौर पर शांति का दौर जारी रहा था और सूबे में चुनाव भी संभव हो पाए थे। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस साल की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराए है। आज के दिन लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। आज जिस गति से मनुष्य तेल, गैस, पानी आदि का उपयोग कर रहा है, शायद ही हमारी आगे की पीढ़ी इन चीज़ों का उपयोग कर पाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने आज अपने संदेश में कहा कि आज जिस तरह सारी दुनिया में प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है, उससे हालत ऐसी हो सकती है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक दिखाई दे। वैसे प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए कई देशों में कोशिशें भी हो रही हैं। आइए सुनते हैं अपूर्व कृष्ण की ये रिपोर्ट।
एक जानवर की प्लास्टिक की वजह से दर्दनाक मौत। दक्षिण थाईलैंड की इस पायलट वेल ने 80 प्लास्टिक के थैले खा लिए जिनका वजन 80 किलो से भी ज्यादा था। इंसानों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों का एक और शिकार। दक्षिण पूर्व एशिया के देश प्लास्टिक प्रदूषण में घिर चुके हैं। इंडोनेशिया की नदियों में जमा प्लास्टिक के ढेर को हटाने के लिए सेना बुलानी पड़ी है। भारत भी अछूता नहीं, पर यहाँ समुद्र तटों पर सफाई की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बस्तियों में जमा कूड़ा हटाने की अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। अफ्रीका में कई देशों ने समस्या से निजात पाने का तरीका ढूंढ निकाला है। कीनिया ने प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर जुर्माना लगा दिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इन देशों में नीतियां भले अच्छी हों, उनका पालन अच्छी तरह नहीं हो रहा।
हर मिनट एक ट्रक जितना प्लास्टिक का कूड़ा समंदर में फेंका जाता है। सालों से ये कूड़ा जमा हो रहा है और समस्या यही है कि ये कहीं नहीं जा रहा।
कुछ ही दशकों की लापरवाही ने ये मुसीबत खड़ी कर दी है। समंदर तक कम प्लास्टिक पहुँचे इसकी शुरुआत हो रही है, पर इस समस्या के पूरी तरह खत्म होने में अभी सैकड़ों साल लगेंगे।
प्लास्टिक कचरे को कम करने की कोशिश, और ऐसा नहीं कि केवल सरकारें कदम उठा रही हैं, अपने स्तर पर भी लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुंबई के माहिम बीच के पास रहने वाले एक पति पत्नी ने इतना कचरा देखा कि वो खुद इसे साफ करने निकल पड़े। और इंद्रनील सेन गुप्ता और उनकी पत्नी राबिया तिवारी की ये कोशिश अब एक बड़ी मुहिम बन चुकी है। सुनिए बीबीसी की मराठी सेवा के संवाददाता राहुल रनसुभे की रिपोर्ट।
मेरी ननद यहाँ माहिम में बीच के पास रहती थी, तो हम हमेशा सोचते थे कि कितना अच्छा लगता है अगर आप बीच के पास रहो। फिर मेरी ननद शिफ्ट कर गई बॉम्बे से, तो घर खाली था तो हमको रहने को मिला। जब हमने यहाँ शिफ्ट किया तो उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअली बीच कितना गंदा है। एक दो बार देखा कि बीएमसी का जेसीबी यहाँ से गुजरा, पर अच्छे से सफाई कभी नहीं हो रहा था। एक डेढ़ महीना वेट करने के बाद हमें लगा कि शायद हमें ही कुछ करना चाहिए, और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हम ही उतरते हैं बीच पर, हम स्टार्ट करते हैं, शायद हमें देखकर और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी मदद करें।
बारिश के टाइम पे शिफ्ट हुए थे तो हमने देखा था जुलाई अगस्त में बहुत सारा प्लास्टिक और बहुत सारा गार्बेज समुंदर पे कलेक्ट हुआ था। तो तब से हम शुरू हो गए, और एक बार हम जब मैदान पे उतरे और जब बीच पे उतरे, कंडीशन इतनी ख़राब थी क्या एक्चुअली हम रुक नहीं पाए, क्योंकि इतना कचरा था निकालना, इतना कचरा निकालना। सो वी स्टार्टेड 10 मंथ्स बैक। हम लोग अभी 25-30 वॉलंटियर्स हर वीकेंड सैटरडे संडे 8-10 उतरते हैं और बीच साफ करते हैं। जब हम साफ करते हैं और जब बीच साफ होती है, टू सी पीपल स्पेंड टाइम ऑन द बीच और बच्चों को क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए बहुत अच्छा लगता है।
या सुबह बाहर देखते हैं या चाय पीते हैं बैठ के बालकनी में, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि चेंज दिखता है और ऐसे लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है, जितने भी छोटे लेवल पे किया है बट कुछ अच्छा और मीनिंगफुल किया है।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
मेघालय की राजधानी शिलोंग में पिछले गुरुवार को एक मामूली से विवाद के बाद भड़की हिंसा की वजह से आज छठे दिन भी हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीते गुरुवार को एक बस में खलासी का काम करने वाले एक खासी युवक और दलित पंजाबी लड़की के बीच कहासुनी और कथित मारपीट वाला ये विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। राज्य सरकार ने विभिन्न समुदाय के लोगों को शामिल कर एक शांति समिति का गठन जरूर किया है, लेकिन फिलहाल स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। ईस्ट खासी हिल्स जिले के डीएम पीएस दखार ने मंगलवार को शिलोंग की मौजूदा स्थिति पर बीबीसी से कहा है कि शिलोंग में अभी कर्फ्यू है, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। आज हिंसा की कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है। हमने अर्ध सैनिक बलों की एक कंपनी को शहर में तैनात किया है। ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2018 के नतीजे आ चुके हैं और बिहार की कल्पना कुमारी ने 691 अंकों के साथ इस परीक्षा में टॉप किया है। अपने माता पिता को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बताने वाली कल्पना मानती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, हो सकता। नीट का रिजल्ट आने के बाद बीबीसी संवाददाता भूमिका राय ने उनसे बात करके उनके अनुभव जानने की कोशिश की।
बहुत अनएक्सपेक्टेड फीलिंग है, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, फर्स्ट टाइम तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है।
तो ये रिजल्ट कब आया और आपको किस तरीके से आपको मालूम चला और किसने बताया?
एक्चुअली अनिल स्वरूप जो की सेक्रेटरी इंचार्ज मिनिस्टर के, उन्होंने ट्वीट करा था की रिजल्ट 4 जून को ही डिक्लेयर होने वाला है, तो फिर मुझे वहाँ से तो पता चल गया की आज रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो मेरी दीदी चेक की,
तो उन्होंने पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपको मालूम चला कि आपके 99.9% हैं?
एक्चुअली जब सीबीएसई का ऑफिशियल आंसर किसी मैच कर ली थी तब तो पता था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे।
तो किस तरीके से आपने तैयारी की थी नीट के एग्जाम के लिए?
एक्चुअली मैं आकाश से ज्वाइन थी, तो वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल देते थे वो पढ़ती थी, उसके अलावा एनसीईआरटी पे फोकस करती थी, कुछ रेफरेंस बुक्स रेफर करती थी।
अपने इस सफलता के पीछे आप किसका किसका हाथ मानते हैं, किसे श्रेय देना चाहेंगी?
एक्चुअली मेरे सक्सेस के पीछे तो मुझे लगता है बहुत लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, मतलब मेरी फैमिली तो मुझे पूरे 2 साल बहुत ज्यादा सपोर्ट की, 2 साल ही नहीं बचपन से बहुत ज्यादा सपोर्ट की, उसके अलावा मेरे सारे रिलेटिव्स उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स, उसके अलावा मेरी माता रानी जी सबका आशीर्वाद, सारे टीचर्स मेरे जिन्होंने हर टाइम मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए, मेरे अकॉर्डिंग मेरे सक्सेस को सारा क्रेडिट इन सबको जाता है।
अच्छा, मैं आपकी बेसिक पढ़ाई के अगर बारे में बात करूँ तो आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई है और किस तरीके से हुई है?
एक्चुअली मैं 3 to 6 जो है वो तो पढ़ाई की थी केंद्रीय विद्यालय से, उसके बाद 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो दी, फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले ली, फिर वहाँ से 10th तक
पढ़ाई की आपने वहाँ?
हाँ, उसके बाद फिर बिहार बोर्ड से मैं अभी 12th कर रही हूँ, मतलब अभी मेरा रिजल्ट आया नहीं, कल आने वाला है।
अपने बारे में आप अगर हमें कुछ बता पाए?
मतलब मुझे ऐसे कुछ खास बोले तो मुझे गेम्स में बैडमिंटन पसंद है, ऐसे थोड़ी बहुत पहले तो टीवी देखती थी, पर इन 2 साल में तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही।
खाली वक्त अगर होता है तो आप सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करती हैं?
मतलब मुझे तो खाली टाइम अपने घर से बात करना बहुत पसंद है।
नीट की टॉपर कल्पना कुमारी से बात कर रही थी भूमिका राय। झारखंड में हाल तक देसी शराब बेचने वाली संथाल परगना की आदिवासी महिलाएं इन दिनों अगरबत्ती बना रही हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत सुधरी है और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा है। इन महिलाओं का समूह दुमका जिले के बेदिया गांव में अगरबत्ती बनाने में जुटा है ताकि आने वाले सावन महीने में अच्छी कमाई की जा सके। सुनिए दुमका से रवि प्रकाश की ये खास रिपोर्ट।
झारखंड के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम मंदिर के बगल से कच्ची पक्की सड़क हमें बेदिया लेकर आई। यह दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड का हिस्सा है। चमरा भैयार पंचायत के इस गांव के 99% आबादी आदिवासियों की है। यहां कुल 73 घर हैं। इन्हीं घरों में से एक घर चांदमुनी हांसदागा है। हल्के नीले रंग से पुते 3 कमरों वाले इस खपरेल घर के लोग इन दिनों खूब सपने देख रहे हैं क्योंकि चांदमुनी हांसदा ने अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग ली है। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले सावन में अगरबत्तियों की बिक्री के बाद इनके घर में खूब पैसा आएगा। चांदमुनी हांसदा कहती हैं,
यही है, मैंने 10 दिन हम लोग ट्रेनिंग किए तो ट्रेनिंग करके सब कुछ पैकेट किए ले गए अगरबत्ती, वही अगरबत्ती बनाने सीखे, मसाला साने।
तो मसाला में क्या क्या रखता है?
काला पाउडर, लाल पाउडर, जैकेट काटी।
और जो मंदिर का अगरबत्ती और ये बेलपत्र फूल आता है वो सब?
हाँ, इसे बनाए एक दिन फूल लाए और ये बेलपत्र उस पीसे, उसे भी मसाला से मैंने मिलाकर वही मिलाकर बनाए।
चांदमुनी हांसदा पिछले महीने तक हड़ियाँ बेचती थी अब उनके साथ गांव की दूसरी महिलाएं भी अगरबत्ती बनाने लगी हैं। इससे गांव का माहौल बदला है। सरकार ने इन अगरबत्तियों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को सपोर्ट करने की पहल की है। जरमुंडी के वीडियो राजेश डुंगडुंग ने बताया कि बेदिया और आसपास के गांवों की 300 आदिवासी महिलाओं को इससे जोड़ने की योजना है।
बेदिया गाँव को जहाँ पर जनजाति आबादी वाले हैं, संथाल गाँव जितने भी घर हैं पूरा संथाल घर हैं, और इनका जो जीवन यापन करने का जो है बहुत अच्छा नहीं कहेंगे हम लोग, जो लोकल जो कहते हैं हम शराब हड़िया बेच करके लोग अपना जीविका अर्जन करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में हम लोग एक बदलाव लाना चाहते हैं। ये जो काम है इसका अभी ब्रांडिंग होना है, ब्रांडिंग के लिए हम लोग का रजिस्ट्रेशन करना रह गया है, और अभी फ़िलहाल 2 मशीनें हैं, इसके बाद हम लोग 25 मशीन तुरंत अभी आएंगे यहाँ पर लगाने वाले हैं, और इसका जो उत्पादन है और बिक्री हमारे सावन मेला के साथ ही शुरुआत यहां पर होगी।
दुमका जिला प्रशासन ने महिलाओं द्वारा निर्मित इन अगरबत्तियों को बासुकी नाम दिया है। इसके निर्माण में बासुकीनाथ धाम स्थित शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र और फूलों का उपयोग किया जा रहा है। इन महिलाओं को अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग देने का जिम्मा आजीविका मिशन का है। इससे जुड़ी रेणु कुमारी ने बताया कि 10 दिनों की ट्रेनिंग के बाद महिलाएं अगरबत्ती बनाना सीख जाती हैं। रेणु कुमारी ने बीबीसी से कहा,
जैसे हम लोग जेएसएलपीएस में जुड़े तो दीदी लोग बेरोजगारी थी, तो इन लोग को प्रशिक्षण जैसे आकर के एक दिन बताएं कि दीदी आप लोग रोजगार कुछ कीजिए, तो बोला क्या करेंगे दीदी, तो बोले अगरबत्ती का ऐसे ऐसे करवा रहे हैं आप लोग कीजिए, तो बोला इसमें क्या क्या लगेगा, तो फॉर्म के बारे में बताएं सर, फिर फॉर्म को सब भर करके फिर दीदी को डिस्ट्रिक्ट में जमा करके दीदी को यहां एक सर को बुलाएं और ट्रेनिंग 35 दीदी एक बैच में किए सर।
दरअसल दुमका जिले का बासुकीनाथ धाम हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। सावन के महीने में यहाँ रोज लाखों लोगों का आना होता है, लिहाजा इन अगरबत्तियों की बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जरमुंडी स्थित मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि अगरबत्तियों की बिक्री के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें सेल्स दीदी का नाम दिया गया है। राकेश कुमार ने बताया,
वहाँ पे इन लोगों को एक सेल्स दीदी का भी हमने फॉर्मेट रखा है इसमें, कि जैसे बनाना तो एक मैन्युफैक्चरिंग दीदी लोग का काम होगा, और उसमें हम लोग सेल्स दीदी को भी ट्रेंड कर रहे हैं जो श्रावणी मेला में अपने स्टॉल लगाएंगी। स्टॉल हम लोग उनको देंगे, सजाएंगे, उसका ब्रांडिंग हम लोग करेंगे, वो स्टॉल लगाएंगी।
बहरहाल बेदिया गाँव में हर तरफ अगरबत्ती की सुगंध फैली है। उम्मीद है कि यह सुगंध कायम रहेगी और यहाँ के महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की कहानी दूसरों के लिए भी प्रेरक बनेगी। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए बेदिया, दुमका में।
अप्रैल की 24 तारीख को आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय इलाकों में सिर्फ 13 घंटों के अंदर कुल मिलाकर 37,000 बार आसमान से बिजली गिरी। इस घटना का अध्ययन किया जा रहा है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने इन इलाकों का दौरा किया और वहां से ये रिपोर्ट भेजी है।
मौसम में हो रहे बदलाव और बढ़ते तापमान की वजह से विश्व भर में अजीब भौगोलिक घटनाएं घट रही हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में भी इसी कारण से अप्रैल की 24 तारीख को एक अविश्वसनीय घटना घटी। देश के तटवर्ती इलाकों में सिर्फ 13 घंटों के अंदर कुल मिलाकर 37,000 बार आसमान से बिजली गिरी। आसमानी बिजली ने सिर्फ मई महीने में ही 15 जाने गुंटूर जिले में ही ली। गुंटूर के एसपी वेंकटा अपाला नायडू कहते हैं कि ये उनके जिले के लिए अप्रत्याशित घटना है।
पहले एक साल में बिजली गिरने से 3 या 4 लोगों के मरने की बात सामने आती थी, मगर इस साल सिर्फ एक ही महीने के अंदर सिर्फ गुंटूर जिले के तटवर्तीय इलाके में 15 लोग बिजली गिरने की वजह से मरे हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं।
अनंतराम गांव के राघव रेड्डी अपने खेत में काम कर रहे थे जब बादल गरजने लगे और एक के बाद एक बिजली गिरने लगी।
कुल मिलाकर 3 लोग थे जो खेत में काम कर रहे थे, जब अचानक बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए मेरे 2 साथियों ने पेड़ के नीचे शरण ली। मैं उनसे कुछ ही दूरी पर था, मैंने उन्हें यहीं पर मरते हुए देखा। बिजली गिरने की वजह से मैं भी झुलस गया था।
अपने 2 बेटों को खो देने वाली जोनाला कोटेश्वर रम्मा भी उस घटना को याद कर सिहर उठी है।
मेरी इतनी उम्र में मैंने कभी इतनी बार एक साथ बिजली को आसमान से गिरते हुए नहीं देखा। मैं अपने घर में बैठी हुई थी जब गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया मेरे पास और बोला कि खेत में बिजली गिरी है। बिजली कड़कने की ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे।
समुद्री तट पर रहने वाले कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है और उसका मलाल उन्हें आज तक है। कोकल्ली चेन्ना राव मछुआरों के समाज के बुजुर्ग हैं। उनका कहना है कि सरकार के लोग तूफान की और खराब मौसम की चेतावनी देते हैं, मगर कोई चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता।
मौसम खराब होने पर सरकारी अधिकारी जगह जगह लाल झंडे लगा देते हैं, मगर हमारे समाज के लोग भी अधिकारियों को शराब और तंबाकू देकर समुद्र में चले जाते हैं, इसीलिए इतनी मौतें हो रही हैं। हम जब भी अपना जहाज लेकर पूर्व की दिशा में जाते हैं तो एक भगवान का नाम लेकर जाते हैं, जब पश्चिम की दिशा में अपनी नाव लेकर जाते हैं तो दूसरे भगवान का नाम लेकर जाते हैं।
आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस अप्रत्याशित बिजली गिरने की घटना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता का अभियान शुरू किया है। सेना के रिटायर्ड कर्नल संजय श्रीवास्तव को आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन विभाग का सलाहकार बनाया है।
लाइटनिंग स्ट्राइक्स। अब सबके पास मोबाइल फोन है। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमने एक मोबाइल ऐप बनाया है जो लोगों को चेतावनी देता है। वो मोबाइल पर चेतावनी के साथ साथ लोगों को क्या करना है यह भी बताता है। अगर बिजली गिरने वाली है तो ऐप में फौरन चेतावनी के साथ सलाह भी दी जाती है कि लोग अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लें।
मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि मानसून से पहले तटवर्ती इलाकों में तूफान का आना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, मगर जिस तरह इस साल तूफानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और जिस हिसाब से बिजली गिरने की घटनाएं हो रही हैं, वो चिंता की बात जरूर है।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है। सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं। सबसे पहले बात करिए फ्रेंच ओपन की।
रिहान जी, सबसे पहले आज जो है फ्रेंच ओपन में मुकाबला हो रहा है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज से शुरू हो चुका है। और आज मेंस सिंगल्स की अगर बात करें तो आज अभी जो मुकाबला चल रहा है लाइव, वो चल रहा है नोवाक जोकोविच और चिनचिनातो के बीच। और उसके बाद एक मुकाबला जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो है डोमिनिक थीम और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच हुआ मुकाबला, जिसके अंदर डोमिनिक थीम ने जीत हासिल की है। पर अगर वुमेन्स सिंगल्स की बात करें तो यहाँ पर स्लोन स्टीफन्स और दारिया कसतकीना के बीच मुकाबला आज होना है और ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। और आज एक और भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है और वो है मेंस डबल्स में रोहन बोपन्ना और एडगोर रॉजर वेस्ली का मुकाबला है मैक्टिक और अलेक्जेंडर पेया की जोड़ी के साथ, तो ये भी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। तो ये विशेष मुकाबले हैं। और अगर हम कल की बात करें तो कल गार्बिन मुगुरुज़ा और मारिया शारापोवा का मुकाबला है क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। लेकिन अगर हम आगे आज की बात करें तो आज एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है और वो ये खबर है कि लिएंडर पेस जो हैं वो एशियन गेम्स में खेलेंगे, लेकिन यूकी भामरी को एशियन गेम्स से राहत दी गई है। और ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का ये फैसला है क्योंकि उनको माना जा रहा है कि वो यूएस ओपन में बेहतरी के साथ खेल सकते हैं, और क्योंकि यूएस ओपन 27 अगस्त को होना है शुरू, जिसकी वजह से एशियन गेम्स में उनको जो है आराम दिया गया है और तैयारी करवाई जा रही है यूएस ओपन के लिए।
उनकी वैसे भी रैंकिंग भी इस समय 83वीं रैंकिंग है विश्व स्तर में, तो जाहिर है कि अमेरिकन ओपन में उनके लिए चांसेस बेहतर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यांशी आपका। और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में रमजान के लिए जारी संघर्ष विराम का सम्मान करती रहेगी। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह ने देश के समूची आयकर व्यवस्था की समीक्षा के आदेश दिए हैं। सप्ताह भर से चल रहे प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने बीबीसी से कहा है कि उनके देश के खिलाफ की गई नाकेबंदी ने उनके देश को पहले से अधिक मजबूत किया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबास्टियन कुर्ज का कहना है कि उनका देश रूस और पश्चिमी देशों के बीच पुल का काम करना चाहता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA को आधिकारिक रूप से बताया है कि उसने अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।